اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023. آج ہم اس میں سے کنٹینیو کریں گے پارہ نمبر 28، جس میں سے ہم قد سمی اللہ میں ابتدائی صورتیں پڑھ چکے. صورت مجادلہ، صورت حشر، صورت ممتحنہ اور صورت صف ہو چکی. اب ہم چلیں گے صورت جمعہ پہ. تو صورت جمعہ ہے، ترتیب میں 62 نمبر کی سورہ، 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 1 سے 8 تک. ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و با حکمت ہے، وہی جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور جن کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے. یہ کون ہے آپ کو پتا؟ یہ ہم ہیں الحمدللہ. اور وہی غالب پر حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو. اللہ کی باتوں کو چھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجئے کہ یہود، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، الذی کون سی، تفرون من، فرار چاہتا ہے نا انسان، دوا کھا لو، انشورنس کرا لو، ہیلدی تھنگز، اس کو جوائن کرو، اس جم کو جوائن کرو. تو فرمایا وہ موت، موت الذی تفرون من ہو، وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی. پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سب کچھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ دیکھیے کہ سورت تو جمعہ تھی، لیکن شروع میں یہود کا معاملہ ہو گیا. تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تو اپنی کتاب کو ایک بوجھ سمجھا. آپ دیکھیے کہ جس طرح کسی گدھے کے اوپر میڈیکل کی بکس ڈال دیں تو کیا آپ اس کو ڈاکٹر گدھا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح، بالکل سیدھی بات اپنے اوپر لے کر کروں گی. قرآن کا بوجھ اپنے اوپر لادنے والا بھی مسلمان نہیں بن پاتا جب تک اس پہ عمل نہیں کرے گا. تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہود کی طرح ہم نے بھی قرآن کے احکامات کو بوجھ تو نہیں سمجھا ہوا؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سے ڈر لگتا ہے؟ جو لوگ آج اس کتاب سے ڈرتے ہیں نا، کل اپنی نام اعمال سے ڈریں گے. مشفقین مما فی، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. قیامت کے دن یا روز محشر سب سے زیادہ خوف انسان کو اپنی انٹری سے ہو رہا ہوگا، جو اس نے نیکیوں اور بدیوں یا جو بھی اس نے گناہوں کی صورت میں لکھی ہوں گی. کیا ہم نے بھی اس کا کچھ علم تو لے لیا مگر اس کو عمل میں نہ ڈالا؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھے. یہود جو ہے نا ہمارا ماضی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مسلمان امت یہود کا عکس ہے. تو میں نے آپ نے ان آیات سے کیا سیکھا؟ اللہ کی تعریفیں اور کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے نا، تو ہم نے بھی کرنی ہے. اسی طرح اللہ نے جو قرآن کی ایک خوبصورت سی نعمت ہمیں دی ہے، ہم نے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. اس سے پیار کیجئے، اس سے انجوائے کیجئے. یہ کاغذوں کا بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کی میری زندگی کی کتاب ہے. جس نے اس کتاب سے محبت کی اس کو اللہ سے محبت ہوگی، اور اللہ کو اس سے محبت ہوگی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، ایمان والوں کی تربیت کرنی ہے، اور کھلی گمراہی میں نہیں ہونا. اور اس سارے پڑھنے کے دوران اپنے آپ سے ایک نیت کیجئے، کوئی دوسرا کہے نہ کہے. میں نے خود بھی اپنے لیے عمل کے نقطے نوٹ کرنے ہیں. آگے رکوع نمبر 2 میں خاص طور پہ ایک واقعہ ہے، 9 سے 11، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف تو دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ یہاں ایک خاص واقعہ بھی ہے جس کو سمبلائز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور ہمارے مردوں کو، آف کورس، کیونکہ روزی روٹی کمانے کی تکلیف اللہ نے عورتوں کو نہیں دی، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، ہر روپ میں مرد ذمہ دار ہے، چاہے شوہر ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو۔ تو اس صورت میں یہ مسائل جو اسپیشلی اس وقت ہمارے سامنے ہے نا، اس کو پڑھتے وقت آپ نے نوٹ کرنی ہے کچھ چیزیں کہ جو آپ اپنے گھر کے مردوں کو بتا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو بڑی خوبصورت حدیث آپ نے جا کر شیئر کرنی ہے، ترمذی کی روایت ہے 496، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا، اشارہ ہے پاکی کے غسل کی طرف، اور سویرے پہنچا، شروع سے ہی خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا، پھر خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ آپ کیوں ثواب کو ناپتے تولتے ہیں؟ آپ کے رب کے پاس خزانے ہیں ثواب کے، صرف ہمیں اسے لینے کا طریقہ آ جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے، اور اس میں جو روایت ہے وہ جابر بن عبداللہ سے ہے کہ جمعے کے دن سامان تجارت لیے ہوئے اونٹ آئے، ہم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں دیکھ کر سوائے 12 آدمیوں کے سب لوگ ادھر ہی دوڑ پڑے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ اذا رأوا تجارتاً او لہواً فضوا الیہا۔ قحط کا دور تھا مکہ میں اور مدینہ میں، آپ کو پتا ہے کہ لوکل چیزیں تو ہوتی کم ہیں، باہر سے سامان تجارت تھا، یہ ایسی ہے کہ جیسے آج کل راشن بڑھتا ہے اور اس تصویروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، کبھی آپ لائنیں لگی دیکھا کریں کچھ جگہوں پہ افطاری بڑھتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور میں اگر کچھ لوگ اپنی جگہ سے ہل گئے، کیوں ہلے صحابہ؟ بہت بڑا اعتراض ہے لوگوں پہ، تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی نئے نئے لوگ تھے دین میں آئے ہوئے، اور دوسری بات ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ پیٹ لگا ہوا دکھتا ہے۔ اور یہ روایت 4899 کی ہے۔ آپ نے میں نے کیا لینا ہے؟ جمعہ کا اہتمام کرنا ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا اور باقی سنتوں کو ادا کرنا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد بھی کرنا ہے، اور تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینی ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کرنا ہے، 8-9 سال کی عمر پلس کے بچے، آپ نے ان کو جمعے کے لیے ایک دن پہلے ایسے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے جیسے آپ عید کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ جمعہ امت مسلمہ کا عید کا دن ہے۔ میرا لئے 3 سال پیچھے جو دور قرآن تھا، میں نے اس میں بہت ہی خوبصورت احادیث کوٹ کی تھیں، بلکہ دور قرآن میں بھی اتنی انیوژل چیزیں ہیں کہ بس اتنا سمجھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے نا، وہ جمعے کے جمعے ہوا کرے گا۔ وہ جو ہوئیں یوم اذن نادرا الا ربیہ ناظرہ۔ تو بہرحال سورج جمعہ کا میسج کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، دنیاوی کاموں سے زیادہ نماز کو ترجیح دینی ہے، مال و دولت سے زیادہ اللہ کی محبت کی طلب رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہ سورۃ المنافقون، 11 صرف آیتیں ہیں لیکن غضب کی صورت ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ کے جو 3 کردار دیکھے تھے اس میں سے اب ہم دوسرے پہ ہیں، پیچھے سورۃ مومنون 18 پارے کے شروع میں پڑھ چکے، 30 پارے میں سورۃ کافرون آ رہی ہے، اور یہاں منافقون ہے، 63 نمبر کی سورہ ہے۔ اس کا ٹاپک ہی ہے، کچھ صورتیں ہوتی ہیں نا ان کے نام میں بس ایک کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کے اوپر ایک ایسے ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1 سے 8، اللہ منافقوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تعارف تو دیکھیے ذرا نفاق والوں کا کیسے ہوا، فرمایا تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، यानी ये कौन सी नई बात है। अब्दुल्ला बिन अबी बिल्कुल मस्जिद नबी के दरवाजे पे आके ना खड़ा होकर लोगों को कहता था, आ जाओ अंदर, अल्लाह के नबी हैं, खुतबा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा खुतबा देते हैं। भाई अगर आपने ये बात कहनी है तो बाजार में खड़े हों, उनको बताएं जो नहीं आए हुए, जो आए हुए हैं उनके सामने बैठ कर तारीफें कर लेने से क्या मिलेगा। तो असल में यह मुनाफिकाना किरदार है, आगे आगे रहना और नज़रों में रहने वाला अंदाज़। क्या कहा अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए, बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। ये सबब से है कि ईमान लाकर फिर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पर मोहर कर दी गई। अब ये नहीं समझते, जब आप इन्हें देख लेंगे तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम होंगे, ये जब बातें करने लगें तो आप इनकी बातों पर अपना कान लगाएं, गोया कि ये लकड़ियां हैं और दीवार के सहारे लगाई हुई हैं, हर सख्त आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं, यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह इन्हें गारत करे, कहाँ से फिरे जाते हैं। और जब इनसे कहा जाता कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तग़फार करें, तो अपने सर मटकाते हैं और आप देखेंगे कि वो तकब्बुर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक़ में आपका इस्तग़फार करना और ना करना दोनों बराबर है, अल्लाह ताला इनको हरगिज़ ना बख्शेगा, बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यही है वो जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह के पास हैं इन पर कुछ खर्च ना करो, यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं, और आसमानों ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ताला की मलकियत में हैं, लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ हैं। वो ये कहते हैं कि अब अगर हम लौट कर मदीने जाएंगे तो इज्जत वाला वहाँ से जिल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और इसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये मुनाफिक जानते ही नहीं। ये है जी स्ट्रॉन्ग सूरा, इसकी भी इंडा स्टडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपको भी मौका मिला तो आप भी वो कोर्स करेंगे और आप देखेंगे कि सूरत मुनाफिकून कैसे इंसान के अंदर, जैसे कॉस्ट्यूम नहीं पहना होता किसी ने, आपने कभी देखा होगा हेलोवीन के मौके पे कुछ लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम पार्टीज होती हैं, अंदर कुछ होता है ऊपर से कुछ है। इस सूरत में अल्लाह ताला मुनाफिकों के मुँह से कॉस्ट्यूम उतार रहे हैं, एक वनीर है, गोल्डन पेपर लगाया, बस वह मिट्टी का बर्तन होता है, लोग उसके ऊपर गोल्डन कलर का पेपर चिपकवाते हैं, दूर में से ऐसे लगता है कि ये गोल्ड का प्याला है, हाथ में पकड़ो तो वजन कुछ नहीं, ज़रा सा इस्तेमाल करो तो कागज़ उतरता है, अंदर मिट्टी है। मुनाफिक की सारी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मैं डिस्प्ले पे रहूँ, मुझे दुनिया की वाह वाह भी मिले और आखिरत में भी मेरा ही झंडा बुलंद हो, ना मेरे हाथ से दुनिया छुटे और ना आखिरत छुटे। हेयर एंड देयर मुनाफे की ये पहचान है कि वो दुनिया का कोई नफ़ा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है आखिरत कभी मुझे मिले। तो ये आयात जो हैं इस पे एक रिवायत है ज़ैद बिन अरकम से, कहते हैं कि मैं ग़ज़वे तबूक में था और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को ये कहते हुए सुना कि जो लोग मुहाजरीन रसूलुल्लाह के पास जमा इन पर खर्च ना किया करो, ताकि वो खुद ही रसूलुल्लाह से जुदा हो जाए। मक्का से मदीना आए थे ना खाली हाथ, है साथ क्या लेकर आते, तो अंसार ने दिल खोल के खर्च किया कि भाई ये हम अपने लिए थोड़ी आए हैं, ये तो हमारे लिए आए और ईमान बचा कर आए हैं, कितने सफ़र करके आए हैं। उन्होंने घर बार खोल दिए, मुनाफिकों को ये बात बड़ी चुभती थी, तो उन्होंने क्या कहा, देखो तुम क्यों इन पे खर्च करते हो, ना खर्च करो ना ये सर्वाइव कर सके और डिपोर्ट हो जाए। अब आपको इस मुल्क में बैठकर क्या समझ आएगी, बहरहाल इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जब लोग नया नया वीज़ा लगवा के जाते हैं ना, कई तो बेचारे घर बेच के जाते हैं, कोई बीवियों के जेवर बेचते हैं, किसी को कोई स्पॉन्सर करता है, तो वो जाने के बाद जो 1-2 साल होते हैं बहुत मुश्किल होता है, नौकरी है कोई नहीं, स्टेटस अभी पक्का पता नहीं है क्या है, तो फिर अगर उनको कोई फैमिली का पर्सन या कोई दोस्त साथी उनको स्पॉन्सर ना करे ना, तो नहीं सर्वाइव कर सकते, या फिर गवर्नमेंट के टुकड़ों पर पलेंगे। तो ये कहते थे कि क्यों मुहाजरीन पर खर्च करते हो, ना करो ताकि ये छोड़ दें सब कुछ, यानी ये अफोर्ड ही ना कर सकें, जी हमारे तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, हम कैसे करें, अच्छा फिर नहीं करते। और इसने ये भी कहा कि अगर हम मदीना लौट कर जाएंगे तो इज़्ज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वालों को निकाल देगा। इज़्ज़त वाला किसको कह रहा है, अब्दुल्ला बिन अबई खुद को, और नऊज़ुबिल्लाह दूसरा लफ्ज़ किसके लिए बोल रहा है, दुनिया के सबसे बाइज़्ज़त इंसान के लिए। खैर हुआ क्या, कहते हैं कि मैंने इसका जिक्र अपने चचा साद बिन उबादा अंसारी से किया या उमर से जिक्र कर दिया, रावी को शक है कि किससे बात की, उन्होंने जाके अल्लाह के नबी से कह दिया, अल्लाह के नबी ने इनको बुला लिया, मैंने आपको सारी बातें बता दी। अल्लाह के नबी ने इस बात की तहकीक के लिए अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों को बुला भेजा, अब सामने आके मुकर गए, अल्लाह की कसम हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। अब ये चूंकि बच्चे थे ना, जैद बिन अरकम, इसमें लिख लीजिए इस बारे के साथ जैद बिन अरकम, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे झूठा समझा और अब्दुल्ला को सच्चा समझा। देखिए नबी का कितना प्यारा गुमान था कि इतना लंबा तड़ंगा, इतना चौड़ा चिकला आदमी है, ये कैसे झूठ बोलेगा। तो चलो बच्चे को तो गलती लग गई, आप तो ये कहते हैं कि मेरा तो दिल गम से भर गया। लेकिन ना बच्चा भी सच्चा हो और आप उसको झूठा कह दें फिर क्या होता है। कहते हैं कि मुझे इतना सदमा हुआ जितना कभी ना हुआ। फिर मैं घर बैठ गया, मतलब मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया। मेरे चचा ने कहा कि मेरा ख्याल नहीं था कि अल्लाह के नबी तुम्हारी ऐसे तकजीब करेंगे और तुम पर नाराज़ होंगे। और ये कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने ये सूरत नाजिल की, इज़ा जाकल मुनाफिकून, एक बच्चे की बेगुनाही में ये सूरत नाजिल हुई। अपने बच्चों को ये किस्से सुनाया करें। पीछे हज़रत आयशा की शान में आयतें नाजिल हुई थी ना, इन्नल्लज़ीना जाओ बिलिफ़्क़ी, तो यहाँ क्या पता चला कि जब ये आयतें उतरी अल्लाह के नबी ने इनको बुलाया और तिलावत की और फरमाया, ऐ जैद अल्लाह ने तुमको सच्चा कर दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह लज़ीम। फिर आप देखिए कि नायात में मुनाफिक के लिए एक लफ्ज़ आपने भी पढ़ा है, कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। खुशबुम मुसन्नदा क्या होती है, दीवारों के साथ पैनलिंग हुई होती है, पूरी दीवारों पे खूबसूरत तरीके की बारीक सी वुड होती है, तो उसकी वो एक लेयर सी लगा देते हैं और देखने में क्या लगता है कि ये पूरी वुड है, लेकिन अंदर उसके सीमेंट होता है, सूखी लकड़ी खूबसूरती के लिए होती है। सूरत इब्राहिम में हमने एक आयत पढ़ी थी, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसला, बंदे मोमिन को, ईमान वाले को एक शजरे तैयबा से तशबीह दी थी। मोमिन सरसब्ज दरख्त है, यानी मोमिन सब्ज दरख्त होता है, कुरान का पानी पड़ता है और सब्ज़ा आ जाता है, मुनाफिक सूखी लकड़ी है। पानी पड़ता है ना लकड़ी पे तो लकड़ी फूल जाती है। घर बंद कर दें 2-4 महीने के बाद निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि फर्श फूल चुके हैं, दीवारों की छाल उतर रही, ये हो रहा वो रहा। ये अगर आपको मिसाल मैं समझा पाई तो आपके मेरे यहाँ आने का मकसद हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। मुनाफिक जड़ कटा होता है, टिक टिक टिक, जड़ से जो कट गया तो सूख गया। मोमिन दरख्त से जुड़ा होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहा रख। मुनाफिक देखने में खूबसूरत लगता है, वो सजी हुई लकड़ियाँ और डेकोरेशन जो हो रही है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है, लाइफ लेस होता है। उस पे वही का पानी पड़ेगा ना तो और फूलेगा, जबकि मोमिन एक सब्ज़ दरख्त की तरह होता है। तो करना क्या है, अपनी जड़ों को मज़बूत रखना है। हम देखिए कि जितना ज़्यादा इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं ना, उतना हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबसूरत मिसालें दी हैं। तो अमल की बात क्या है कि निफाक को टटोलना है, ईमान लाना है, झूठ से बचना है, अपनी कस्मों को ढाल नहीं बनाना, अल्लाह की राह से नहीं रोकना और ईमान वालों पर खर्च करने से नहीं रोकना। बस खुद नहीं खर्च करते, कोई दूसरा भी कर रहा तो उसको कहते छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है। फिर इसी तरह इज्जत को अल्लाह रसूल और ईमान वालों का हक समझना है। इसके बाद रुकू नंबर 14 आयत नंबर 9-11 है, टॉपिक है अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करना। बहुत ही खूबसूरत सी आयत है जिसमें आपको मुझे कभी कभी अपना आईना दिखता है। क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हीकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए मुसलमानों तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें, और जो कोई ऐसा करें तो वो तो बड़े नुकसान वाले लोग हैं, ज़ियाकार लोग हैं, खसारे में हैं, बैंकरप्ट हैं वो। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। तो कहने लगे, रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो थोड़ी देर तक मोहलत क्यों ना देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर इसे अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है। ये है जी आखिरी हिचकी के इंतज़ार में बैठे हुए लोग, सारी ज़िंदगी जमा करते जमा करते जमा करते। कितने मौके आते हैं जिसमें वो सदका करें, वो खैरात करें, वो क्या कहते हैं, अभी नहीं ज़रा बाद में करना ही है, मैंने तो सारे ही अल्लाह को दे देना है, मेरी सारी चूड़ियाँ अल्लाह को, मेरा घर जो अल्लाह को, बस कब, जब मेरी सांस उखड़ जाएगी। याद रखिए ज़िंदगी में मैं आप हमारे पास 1,000 है कि लाख है कि करोड़ है कि अरब है, पूरे का पकड़ा पूरा उठाकर किसी को भी दे दें, नो क्वेश्चन एट ऑल। हिबा आप सारे बच्चों में बांट दें, कोई नहीं पूछ सकता, भाई बहनों को दे दें, अम्मा को दे, अब्बा को दे, हमसायों को दे, नौकरों को दे, जिसको मर्जी दे दें। इधर सांस अटकी, नरखरा जैसे नरखरे में आ जाती ना जान, उसके बाद आपकी हर चीज़ ओनली 1/3 रह जाएगी आपकी, आउट ऑफ 100 33.3, 66.66 आपके इख्तियार से निकल गया। और अगर ये जो वन थर्ड है ना, इसमें भी अगर आपके पास कई और लाइबिलिटी हैं, कर्ज़े लिए हुए हैं, किसी का हक देना है, कोई ज़कात पीछे रह गई थी, कर्ज था वो था, वो भी निकल जाएगा, तो आपकी तो डिवेल्यूएशन शुरू हो गई। आज कोई आपसे कहता है कि 3 कनाल का घर आपका है, और अचानक कोई ऐसा मामला होता है 3 में से 1 कनाल किसी और को मिल जाए, तो आप तो चीखेंगे ना। और किस बात का इंतज़ार है? क्या सीखा? अल्लाह की राह में खर्च करने वक्त इंतज़ार नहीं करना, नेक लोगों में शामिल होने की कोशिश करना है, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना, और अल्लाह ताला अल खबीर है इस पर ईमान रखना है। मुहासवा करते हैं अपना, क्या मेरे अंदर निफाक तो नहीं, क्या मैं बेअमल तो नहीं, कहीं मैं सूखी लकड़ियों की तरह तो नहीं, इतना कुरान का पानी पड़ा और मेरा दिल ही नहीं हरा हो रहा, मेरा दिल ही नहीं लग रहा कुरान में, मुझे अभी तक अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो रही, कहीं मैं दिल से खोटी तो नहीं हूँ। और याद रखिए, हदीस में आता है कि निफाक से नहीं डरता मगर मोमिन, और निफाक से खुद को मुबर्रा नहीं समझता मगर मुनाफिक। तो लिहाजा किसी को मत सोचिए। ये आयतें, ये सूरतें मेरे आपके लिए हैं, हमारे किसी हमसाए के लिए नहीं है। हाँ, ये मेरी नंद की बात है, ये मेरी देवरानी है, ये तो मेरी भाभी की बातें हो रही, नहीं, ये जुर्म होगा। देखिए, अल्लाह के नबी नबी थे, उनको बता दिया गया कि ये मुनाफिक है, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, 70 लोग मुनाफिक थे, दैट्स इट, वहीं क्लोज। आज मैं और आप किसी में अपेरेंट निशानियां भी देख लें, वही जो मुनाफिक की 4 अलामतें हम पढ़ते हैं, इसके बावजूद मैं और आप उसको मुनाफिक नहीं कह सकते, इसलिए कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक दे। आगे है जी सूरत तगाबुन, 64 नंबर सूरा है, 18 आयात हैं। सूरत तगाबुन क्या है? बस उर्दू में लफ्ज़ सुना, गबन, गबन का केस हुआ, फला अफसर पकड़ा गया, थोका, यानी क़यामत के दिन के नामों में से एक नाम यौमुत तगाबुन। और मुसब्बिहात वाली सूरतों में से ये सूरत, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। रुकू नंबर 15 है, आयत 1-10। टॉपिक है कि अल्लाह ने तुम्हारी सूरतें बनाई और खूब बनाई, यानी अपनी शक्लों को बुरा भला मत कहो। कैसे? तमाम चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, इसी की सल्तनत है और इसी की तारीफ़ है, और वो हर हर चीज़ पर कादिर है, इसी ने तुम्हें पैदा किया है, बस तुम में से बास तो काफिर हैं और बास ईमानदार हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला खूब देख रहा है, इसी ने आसमानों को और ज़मीन को अदलो हिकमत से पैदा किया, इसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और इसी की तरफ लौटना है। आज के बाद कोई अपनी सूरत को बुरा ना कहे, और किसी की सूरत को बहुत एडमायर भी ना करें। आज के दौर का ऑब्सेशन, और मुझे एक सिस्टर है हमारे पास कहीं बाहर की दुनिया में, तो उनका फील्ड है ये, कई दफ़ा वो कह चुके हैं कि मुझे मौका दें और मैं आकर बताऊं और लोगों को, कि बीमारी शुरू हो चुकी है हमारी नौजवान नस्ल में। लुक्स लुक्स हॉट लुक्स, खूबसूरत कौन है, फिगर कैसा हो, स्किन कैसी हो, आंखें मोटी करनी, नाक मोटा करना, फिर वो कॉस्मेटिक सर्जरी करनी, फिर वो कहती हैं जिस्म को पतला रखना, कहती है ये बीमारी है। अच्छा, पहले लड़कियों में थी और अब ये लड़कों में आ रही है, लड़के कमर नाप रहे हैं, वो अपने जिस्म से बाल नोच रहे हैं, क्या हो गया है? ये सूरत किसको दिखानी है? अल्लाह ने तो आपकी मेरी सूरत नहीं देखनी, तो मैं और आप अल्लाह का फ़ैसला है। आगे पढ़ेंगे सूरह इन्फितार में, अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। तो लिहाजा अल्लाह कहते हैं कि मैंने बनाई और बहुत अच्छी बनाई। कहते एक बादशाह था, तो उसने लोगों से कहा जाओ शहर के सबसे खूबसूरत बच्चे को लेकर आओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। सब चले गए, कोई एक बच्चा ला रहा है, कोई दूसरा ला रहा है। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया, तो काले इकलौते बच्चे को जिसके आंसू भी गिर रहे, नाक भी बहरी, उसको पकड़ा हुआ। लोग बड़े हैरान किए इस बच्चे को लेके आ गए। बादशाह ने कहा अच्छा क्या लाए हो दिखाओ। कहने लगा बादशाह सलामत, मुझे शहर में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं दिखा। क्यों? कहा ये मेरा बच्चा है, तो माँ की नज़रों से तो देखिए ज़रा, और वो आसमानों ज़मीन की हर हर चीज़ का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो वो सब को जानता है, अल्लाह तो सीनों की बातों तक को जानने वाला है। क्या तुम्हारे पास इससे पहले के कुफार की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने अमाल का बबाल चख लिया और जिसके लिए दर्दनाक अजाब है? ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए थे, तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, और अल्लाह ताला तो है ही बेनियाज सब खूबियों वाला। इन कुफार ने ख्याल किया है कि दोबारा ज़िंदा न किए जाएंगे। आप कह दीजिए, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर जो तुमने किया इसकी खबर दिए जाओगे, और अल्लाह पर ये बिल्कुल आसान है। बस तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया ईमान लाओ। है नूर किसको कहा जा रहा है? कुरान के नूर को, क्योंकि कुरान ज़िंदगियों को रोशन कर देता है, इंसान को रोशन ख्याल बना देता है, ब्रॉड माइंडेड बना देता है। ईमान लाओ और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। जिस दिन तुम सबको इसके जमा होने के दिन जमा करेगा, वो यही दिन है हार जीत का। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ला कर नेक अमल करे, अल्लाह इसे इसकी बुराइयाँ दूर कर देगा और इसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बरक्स, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही सब जहन्नमी हैं जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यौमुत्तगाबुन क्या है? आप सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट आऊँगी और फेल हो गए। आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे थे ये तो टॉपर्स में से है और वो फेलर्स में से आ गया, तो क्या बनेगा? सोचने की बात है कि एक इंसान दुनिया में रहते हुए किस तरीके से अपने आप को बचा सकता है अल्लाह की पकड़ से। तो ये जो धोखे का दिन है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के धोखे होंगे, नोट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा रातों की नींद उड़ा देने वाली आयतें हैं ये, इसलिए कि हम सारा वक्त माल और औलाद और इन्हीं के पीछे फिरते हैं ना। क़यामत के दिन कैसे औलाद नेकियां खा जाएगी? हदीस में आता है कि एक शख्स जब क़यामत के दिन दिखेगा तो उसकी नेकियां नहीं होंगी, जबकि कब्र में थी। वो पूछेगा मेरी नेकियां किधर गईं, तो कहा जाएगा तेरी औलाद तेरी नेकियां खा गई, यानी तेरे बाद औलाद ने जो गुल खिलाए उसकी वजह से जो तेरी बनी बनाई इज्जत थी वो भी गई, और तेरी जो नेकियां थी वो भी चली गई। और जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर इसको लेकर सोचें, आज अगर दुनिया में हमने इसकी मेहनत ना की, कोशिश ना की, तो पता नहीं वहाँ क्या होगा। फिर इसी तरह हार जीत का वो दिन क्यों है, लिखिए, मोमिन भी और काफिर भी। मोमिन और काफिर के गबन का दिन है, वो खसारे का दिन है। काफिर का खसारा क्या होगा? ईमान छोड़ने की वजह से, हाय मैं ईमान ले लेता। मोमिन का खसारा क्या है? एहसान की कोताही, एहसान की रविश छोड़ी हुई थी, चल चलाओ का काम करता था दीन के नाम पे। हर शख्स उस दिन पछताएगा कि कुछ और अमल लेकर आता, और क़यामत के दिन इंसान अपने अमाल को हकीर जानेगा। हर उस जगह पे उसको हसरत होगी जहाँ से उसने अल्लाह ताला का नाम न लिया हो, और उस दिन माँ बाप बच्चों की और बच्चे माँ बाप की वजह से परेशान होंगे। बीवी के लाड देखते देखते अल्लाह को नाराज़ कर दिया, शौहर का नाम लेके अल्लाह की नाराज़गी कर ली, तो उस दिन बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट्स होंगे। और डर उसको आना चाहिए जिसको लोग दुनिया में नेक समझते हैं, डरना उसको चाहिए जिसकी मुंह भर भर के लोग तारीफें करते हैं, और खौफ उसके बारे में खाइए जिसको लोग मरहूमो मग़फूरो और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। बस पर्दे रह जाएं, इतनी ही बड़ी बात है। फिर आगे हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला की सिफात पे गौर करना है, दोबारा जी उठने पर यकीन भी रखना है और ईमान भी लाना है, नेक अमल करने हैं, कुफर नहीं करने, और अल्लाह की आयतों को नहीं झुठलाना। जितना ज़्यादा इस पे अमल करते जाएंगे अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसानी करेगा। आगे है रुकू नंबर 16, 11 to 18, सूरत का आखिरी रुकू है। कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के इज़न से। इसको गौर से सुनेंगे हम, दिल ठंडे हो जाएंगे। ये जो आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, और हमेशा दूसरों पे अपनी मुसीबतें डालते हैं, उसकी वजह से उसकी वजह से, तो उसका जवाब है इधर, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह इसके दिल को हिदायत देता है। इसको हाईलाइट कर लें, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा। बहुत इब्तदा में जिन आयतों ने मुझे हिट किया था ना दिली तौर पे, जिसको पढ़ने के बाद मेरे दिल में कुरान की प्यास बढ़ती गई, उनमें से ये आयत था, ईमान चिराग है, बढ़ते बढ़ते ये पूरे दिल को रोशन कर देता है। आप रात को कहीं निकलते हैं, आपको पता ही नहीं किधर जाऊँ, आप नेविगेटर में अपना एड्रेस डालते हैं, फिर वो आपको ले चलती है ना। आप यहाँ बैठे हैं और मेरा ख्याल है कि 7 समंदर पार भी आप नेविगेटर से जा सकते हैं। ईमान इज़ माई नेविगेटर। वो खुद बताता है ये ठीक है ये गलत है, ऐसा ना करना। और इसका एक और मफहूम भी लिख लें, दुख तकलीफ़ बीमारी परेशानी स्ट्रेस, इसके लफ्ज़ को खुरच के निकाल दें आप ज़िंदगी से। आपको हर मुश्किल में से आसानी दिखाता है, उसर में युसर है ईमान। नहीं समझ आ रही बात, ईमान समझाएगा आपको। आपको हिकमत नहीं समझ आ रही, ईमान समझाएगा। ये जो सहाबा की इतनी तारीफें हम पढ़ते हैं ना, उस सर में यूसर और ये और वो, ये ईमान था, पीछे ईमान है। देखिए एक मेन स्विच जाके बाहर को बंद कर देना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएंगी, जैसे बिजली की रॉ आपकी मेरी इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को, ये लाइट्स और ट्यूब्स को और सेंगलर्स को जला रही है ना, बस ये ईमान की रो है जो आपको रास्ते दिखाती है। मेरा रब मेरे से बुरा नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मेरे पे बड़ा मेहरबान है, नहीं, इस बीमारी में बड़ी खैर है, नहीं, ये हालात जो बुरे हैं इसमें अच्छा होगा। आप देखिए कि दुनिया में हर शर में खैर है। अपने लिए एक दुआ किया करें और अपनी औलादों को भी ये दुआ दिया करें कि अल्लाह आपकी तरफ आने वाले शर को खैर में बदल दें। आसान तक रहो शेयन वह खैर लकुम, तो ईमान आपको ना अपलिफ्ट करता है, सर उठा के जियो, तुम क्यों परेशान हो, सारा एहसास महरूमी ख़त्म। और जिसके दिल में एहसास महरूमी है, वो जाकर अपने दिमाग का नहीं, अपनी नफ्सियात का नहीं, अपने ईमान का टेस्ट करवाए। फिर अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। लोगों अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, बस अगर तुम एराज करोगे तो हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ साफ साफ पहुँचा देना है, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल रखना चाहिए। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बास बीवियाँ और बास बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बस इनसे होशियार रहना, और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर कर जाओ और बख्श दो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है, और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। इस पे जुमला लिख लीजिए, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, गाड़ी इम्तिहान, घर इम्तिहान, सेलफोन इम्तिहान, लैपटॉप इम्तिहान, और उसके बाद कुर्सी में जो मर्जी लिख लें, हर चीज़ इम्तिहान है। जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा हिसाब होगा। बस जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते रहो, और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, यानी इसकी राह में खर्च करोगे, तो वह इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा कदरदान और बड़ा बुरदबार है, वो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला पर नज़रें लगाओगे तो फिर तुम्हें अल्लाह सुबहाना ताला मायूस नहीं करेगा। अब इसमें माल और औलाद के कह लीजिए फितने और आजमाइश होने की बात है, तो बड़ा प्यारा वाक़िया इस आयत के साथ। एक मौके पर अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, हसन और हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा दोनों सुर्ख रंग के लंबे लंबे कुर्ते पहन कर खेल रहे थे पास ही, तो गिरते पड़ते चल रहे थे। इतने में उनका अपने कुर्ते में पाँव अटका तो गिर गए, तो रोने लगे। अल्लाह के नबी भूल ही गए कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, फौरन मिंबर से उतरे, उन दोनों को जाकर उठाया और उनको अपने साथ लाकर सामने बिठाया। फिर फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। दिल नहीं पड़ा रहता बच्चों में, माल में दिल नहीं पड़ा रहता। अच्छे से ग्लासेस पहने हो तो सजदा होता है, नहीं इसको स्क्रैच ना आ जाए। कपड़े अच्छे पहने हो, नहीं सिलवटे ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी नबी को भी इस मौके पर याद ना रहा तो हम लोगों की क्या बात है। और ये रिवायत है तिर्मिज़ी में 3774 की। आपने मैंने क्या सीखा कि अल्लाह पर ईमान भी लाना है, अल्लाह और रसूल की इताअत करनी है, और अल्लाह ताला का पैगाम साफ साफ पहुँचा देना है, और ये यकीन रखना है कि कोई मुसीबत अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर नहीं आ सकती। जिन दिनों कोरोना था, मेरा लिए सबसे ज़्यादा ये आयत मारूफ हुई थी, और एक सूरह यूनुस की भी आयत है। अल्लाह पे भरोसा रखना है और माफ़ कर देना है, दरगुजर करना है, चश्म पोशी करनी है, अल्लाह ताला से डर कर रहना है, सुनना है और इताअत करनी है, और अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, और इसी के साथ साथ दिल की तंगी से बचना है। और याद रखिए कि ईमान के साथ खुद ब खुद चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं। फिर आप देखिए कि सूरह तगाबुन हमें क्या पैगाम दे रही है, कौमों की बर्बादी की दो वजूहात, रसूल का इनकार और आखरत के अकीदे में बिगाड़। अल्लाह हमें सही मानों में इन दोनों पे अमल करने की तौफीक दे।